मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दिन की सरफराजी।
प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इस्लामी जिंदगी और आज हम इस प्रोग्राम में माँ को कत्ल करने वाले एक शख्स का इबरतनाक वाकया और उसके बाद उस वाकये से हासिल होने वाले मदनी फूल बयान करेंगे, इसलिए आखिर तक इस सिलसिले में शरीक रहिए। आइए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। आबे कौसर में है, दुरूद पाक पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहबिही वसल्लम। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक मर्तबा हज के मौसम में मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था। हाजियों और उमरा करने वालों की इतनी कसरत थी कि उन्हें देख कर ताज्जुब होता था। मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी कि काश किसी तरह मुझे मालूम हो जाए कि इन लोगों में सबसे अल्लाह पाक की बारगाह में कौन मकबूल है, ताकि मैं उसको मुबारकबाद दूं, और जिसके बारे में मालूम हो जाए कि ये मरदूद है और अल्लाह पाक की बारगाह में उसका हज कबूल नहीं, तो उसको नेकी की दावत दूं और उसके लिए दुआ करूं। जब रात को मैं सोया तो ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ए मालिक बिन दीनार, तू हाजियों और उमरा करने वालों के बारे में फिक्रमंद है, तो सुन, इस मर्तबा अल्लाह पाक ने हर छोटे बड़े मर्द और औरत, सफेद और सियाह रंगत वाले, अरबी और अजमी, अलगर्ज हर हज और उमरा करने वाले को बख्श दिया है, लेकिन एक शख्स की मगफिरत नहीं की गई। अल्लाह पाक का उस शख्स पर बहुत ज्यादा गजब है और अल्लाह पाक उससे नाराज है। उसका हज कबूल नहीं किया गया बल्कि उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस ख्वाब के बाद मेरी जो हालत हुई उसे अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है। मैंने ये गुमान कर लिया कि वो नापसंदीदा शख्स शायद मैं ही हूँ और अल्लाह पाक मुझसे नाराज है। मैं बहुत परेशान रहा, सारा दिन इसी गम और फिक्र में गुजर गया। फिर दूसरी रात थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो फिर मुझे उसी तरह का ख्वाब नजर आया और ऐसी ही गैबी आवाज सुनाई दी। फिर कहा गया, ए मालिक बिन दीनार, तू वो नहीं जिसका जिक्र किया जा रहा है, बल्कि वो तो खरासान का एक शख्स है जो बल्ख शहर में रहता है। उसका नाम मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है। अल्लाह पाक उससे शदीद नाराज है। उसका हज मरदूद है और उसके मुंह पर मार दिया गया है। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं सुबह खरासान से आए हुए हाजियों के काफिले में गया, उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, क्या तुम में बल्ख शहर के हुज्जाज मौजूद हैं? उन्होंने कहा, हाँ, हम में बल्ख के कई हाजी मौजूद हैं। मैंने फिर पूछा, क्या तुम में कोई मोहम्मद बिन हरवन बल्खी है? उन्होंने कहा, मरहबा, उस नेक शख्स को कौन नहीं जानता, उससे बढ़कर आबिद और जाहिद पूरे खरासान में कोई नहीं। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे उन लोगों की जबानी उसकी तारीफ सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि ख्वाब में मामला उसके उलट था। बहरहाल मैंने उनसे पूछा, इस वक्त वो कहाँ होगा? लोगों ने कहा, वो 40 साल से मुसलसल रोजे रख रहा है और सारी सारी रात इबादत में गुजार देता है। अगर तुम उसे तलाश करना चाहते हो तो मक्का मुकर्रमा के किसी टूटे फूटे मकान में तलाश करो, वो ऐसी ही जगहों में रहता है। उन लोगों से ये मालूमात हासिल करने के बाद मैं मक्का शरीफ के वीरान इलाके की तरफ गया और इस इब्ने हरवन को ढूंढने लगा। बिलाखिर एक दीवार के पीछे मैंने एक शख्स को देखा और मैंने पहचान लिया कि यही इब्ने हरवन है। उसकी हालत ये थी कि उसका सीधा हाथ कटा हुआ था और उस हाथ की हड्डी में सुराख करके जंजीर डाल दी गई थी। इब्ने हरवन ने अपने कटे हुए हाथ को जंजीर की मदद से गर्दन से लटकाया हुआ था। इसी तरह उसने अपने कदमों में भी बेड़ियां डाल रखी थीं और वो मशगूले इबादत था। जब उसने मेरे कदमों की आहट सुनी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह पाक के बंदे, तू कौन है और कहां से आया है? मैंने कहा, मेरा नाम मालिक बिन दीनार है और मैं बसरा का रहने वाला हूँ। वो कहने लगा, अच्छा तुम वही मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह हो जिनके इल्म और जोहदो तकवा के डंके पूरे इराक में बज रहे हैं। मैंने कहा, आलिम तो अल्लाह पाक की जात है और जाहिद व आबिद हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हैं। वो अगर चाहें तो खूब ऐश व ऐशरत से जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन बादशाहत के बावजूद उन्होंने जोहदो तकवा इख्तियार किया और दुनिया से बेरगबती इनके अंदर बदरजाए अतम पाई जाती है। हमें तो दुनियावी नेमतें मुयसर ही नहीं, इसलिए इनसे दूर हैं। उसने मुझसे कहा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, तुम मेरे पास किस लिए आए हो? अगर तुमने मेरे बारे में कोई ख्वाब देखा है तो बयान करो। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे सामने वो ख्वाब बयान करते हुए शर्म महसूस हो रही है। वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, तुमने जो ख्वाब देखा है वो बयान करो और मुझसे शर्म ना करो। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिलाखिर मैंने उसे अपना ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनकर वो काफी देर तक रोता रहा, फिर कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मुसलसल 40 साल से मेरे बारे में हज के मौके पर इसी तरह का ख्वाब किसी नेक जाहिद बंदे को दिखाया जाता है और उसे बताया जाता है कि मैं जहन्नमी हूँ। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बातें सुनकर मैंने उससे पूछा, क्या तेरे और अल्लाह पाक के दरमियान कोई बहुत बड़ा गुनाह हाइल है? उसने कहा, हाँ मेरा गुनाह जमीन व आसमान और अर्श व कुर्सी से भी बड़ा है। मुझे तुम अपना वो गुनाह बताओ ताकि मैं लोगों को उसके इर्तिकाब से बचाऊं और उन्हें इस गुनाह से डराऊं जिसकी सजा तुम भुगत रहे हो। तो वो कहने लगा, ए मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, मैं शराब का आदी था और हर वक्त शराब के नशे में मदहोश रहता। एक मरतबा मैं अपनी एक शराबी दोस्त के पास गया। मैंने वहां खूब शराब पी। फिर जब मुझ पर नशा तारी होने लगा और मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया तो मैं नशे की हालत में गिरता पड़ता अपने घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मेरी जोजा ने दरवाजा खोला। घर में दाखिल हुआ तो मेरी वालदा तनूर में आग जलाकर लकड़ियां डाल रही थी और उसमें खूब आग भड़क रही थी। जब मेरी वालिदा ने मुझे नशे की हालत में देखा तो मेरी तरफ आई और मुझे समझाने लगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक घूंसा अपनी वालदा के सीने पर मारा और उसे उठाकर जलते हुए तनूर में डाल दिया। जब मेरा नशा दूर हुआ और मेरी बीवी ने मुझे इस हरकत के बारे में बताया तो मैं तनूर की तरफ लपका। तनूर में देखा तो मेरी वालदा जलकर कोयला हो चुकी थी। मैं ये हालत देखकर बहुत अफसरदा हुआ और उल्टे कदमों टूटे हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा, अपना हाथ चौखट पर रखा और उस हाथ को काट डाला जिससे मैंने अपनी माँ को घूंसा मारा था। फिर मैंने उस हाथ की हड्डी में सुराख किया और उसमें जंजीर डालकर गले में लटका लिया। फिर अपने दोनों पाँव में भी बेड़ी डाल ली। उस वक्त मेरी मिल्कियत में 8,000 दिनार थे। वो सब के सब मैंने गुरूब आफ्ताब से कबल सदका कर दिए। 26 कनीजें और 23 गुलाम आजाद किए और अपनी तमाम जायदाद अल्लाह पाक के नाम पर वक्फ कर दी। अब मुसलसल 40 साल से मेरी ये हालत है कि दिन में रोजा रखता हूँ और सारी सारी रात अपने परवरदगार पाक की इबादत करता हूँ और 40 दिन के बाद खाना खाता हूँ। सिर्फ इफ्तारी के वक्त थोड़ा सा पानी और कोई मामूली सी चीज खा लेता हूँ। मैं हर साल हज करने आता हूँ और हर साल किसी आलिम और जाहिद को मेरे मुतालिक ऐसा ही ख्वाब दिखाया जाता है जैसा आपको दिखाया गया। ये है मेरी सारी दास्तान। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सुनकर मैंने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, ए मनहूस इंसान, करीब है कि जो आग तुझ पर नाजिल होने वाली है वो सारी जमीन को जला डाले। हजरत सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब रात को मुझे नींद आई तो दिल की आंखें खुल गईं। मुझे ख्वाब में प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की जियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मालिक बिन दीनार, तू लोगों को अल्लाह की रहमत और उसके अफ़ुव करम से मायूस मत कर। बेशक अल्लाह पाक मोहम्मद बिन हरवन के अफ़आल से बाखबर है اور اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرما کر اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو صبح اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا، بے شک اللہ پاک بروز قیامت میدان محشر میں تمام اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اور اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوائے گا اور ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ذرے ذرے کا حساب لوں گا، اور اگر کسی نے ذرہ بھر بھی ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلواؤں گا۔ اے ابن ہرون، کل بروز قیامت اللہ پاک تجھے اور تیری ماں کو اکٹھا کرے گا اور تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا۔ فرشتے تجھے مضبوط زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف دھکیل دیں گے، پھر تو دنیاوی 3 دن اور 3 رات کے برابر جہنم کی آگ کا مزہ چکھے گا، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ میرا جو بندہ بھی ناحق کسی جان کو قتل کرے گا یا شراب پیے گا تو میں اسے جہنم کی آگ کا مزہ ضرور چکھاؤں گا، اگرچہ وہ کیسا ہی برگزیدہ کیوں نہ ہو۔ اے ابن ہرون، پھر اللہ پاک تیری ماں کے دل میں تیرے لیے رحم ڈالے گا اور اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ وہ اللہ پاک سے سوال کرے کہ اے اللہ پاک، تو میرے بیٹے کو بخش دے۔ پھر اللہ پاک تجھے تیری والدہ کے حوالے کر دے گا، تیری والدہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں لے جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں فوراً ابن ہرون کے پاس گیا اور اسے اپنا پورا خواب سنایا۔ خدا پاک کی قسم، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور اس کی روح اس طرح آسانی سے اس کے تن سے جدا ہوئی جیسا کہ پتھر کو جب پانی میں ڈالا جائے تو وہ آسانی سے نیچے کی جانب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا اور میں نے اس کے جنازے میں شرکت کی۔ پیارے اسلامی بھائیو، والدین کا ادب و احترام کس قدر ضروری ہے، اس حکایت سے آپ جان گئے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، اور جو بد نصیب ماں باپ کو ناراض کرتا ہے اس کے لیے بربادی ہے۔ اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً ان کے بڑھاپے میں زیادہ خدمت کی تاکید فرمائی ہے۔ یقیناً ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ زیادہ بڑھاپے میں بسا اوقات بستر ہی پر بول و براز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً اولاد بیزار ہو جاتی ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی تو آخر بچے کی گندگی برداشت کرتی ہی ہے۔ بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر خواہ کتنا ہی چڑچڑا پن آ جائے، بلا وجہ لڑیں چاہے کتنا ہی جھگڑیں، بے شک پریشان کر کے رکھ دیں، مگر صبر صبر اور صبر ہی کرنا اور ان کی تعظیم بجا لانا ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ تو دور کی بات، ان کے آگے اف تک نہیں کرنا ہے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی اور دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ کہ والدین کا دل دکھانے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مسجد برو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں